सुरैया बाकी लोग कहाँ हैं?
अम्मी तो जब से रिटायर हुई हैं हर महीने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ कहीं चली जाती हैं। मनोजर भी लगता है कारखाने गया है। मैंने भी डॉक्टर से वक्त लिया था इसलिए ऑफिस से छुट्टी कर ली। लो मेरी बहन,
बहुत शुक्रिया। किस डॉक्टर से?
पता नहीं मेरा ये थायराइड दोबारा एक्टिव हो चुका है।
एक अच्छे स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, वहां जाओगी?
नहीं, जिस डॉक्टर के पास जाती रही हूँ वो भी अच्छा ही है। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई तुम?
सुना है अब्बू की सौतेली बहन आई थी,
तुमने कहाँ से सुना?
बहजाद ने बताया।
बहजाद ने हमें मना किया था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन खुद तुम्हें बता दिया। अलबत्ता तुम तो गैर नहीं हो।
कैसी औरत है?
क्या बताऊं तुम्हें, पहली नजर में तो बुरी औरत नहीं लगी मुझे।
उनका कोई फोन या एड्रेस है क्या?
किस लिए चाहिए?
उनके पास जाना चाहती हूँ, बुरा है क्या?
नहीं, बहरहाल तुम्हारी भी फूफी हैं। अलबत्ता अपने भाइयों से बहुत नाराज थी वो।
वजह नहीं बताई?
क्यों नहीं, कह रही थी विरासत में उनका हिस्सा हड़प कर लिया है।
बहजाद कौन सा कम था जो अभी सौतेली फूफी भी बढ़ गई?
खुदा करे बहजाद की बातें सही ना हो बाहर, वरना
वरना क्या इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा?
क्या कहूं। बाहर चाय पी लो, ठंडी हो गई है। दूसरी ले आऊं तुम्हारे लिए?
नहीं शुक्रिया।
इसको पकड़ लीजिए,
किसने
पकड़ो
कार्टन ला
जरा।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम
सलाम। क्या हो रहा है?
अस्सलाम
वालेकुम।
जहमत करके कुछ चाय ले आइए।
क्या हमने इनको नहीं भेजा था? दोबारा वापस आ गए?
फाइनल पीरियड से पहले लगता है कि ऑफिस के हेड को नहीं दिखाया गया था इसलिए उसने सब वापस कर दिया।
इस काम का इंचार्ज कौन था?
मैं इसकी इंचार्ज थी।
मोहतरमा, आप अपना काम सही तरीके से क्यों अंजाम नहीं देती?
देखिए, जब मैंने उनके ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा माल अपनी मर्जी से तैयार करें। अब जबकि तैयार हो गया तो कहते हैं कि कारखाने के चीफ एग्जीक्यूटिव को भी दिखाना चाहिए।
इंजीनियर साहब, ये सब बहानेबाजी है, सब बस कमीशन चाहते हैं।
जनाब, मैं किसी को कमीशन देने वाला नहीं हूँ। 100 दफा कह चुका हूँ, मुझे ग्राहक के नखरों से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा माल क्यों हमेशा वापस आता है, हमें क्यों मुसलसल गलती कर रहे हैं? मोहतरमा, क्या आप मीटिंग के दौरान ग्राहक से दस्तखत नहीं ले सकती ताकि ऐसे मौकों पर मामले से पीछे न हट सकें, ताकि हमें नुकसान न हो? अब कितने छपवाए?
1 लाख।
1 लाख? क्या निराले काम करते हैं आप लोग। इस मंदी की हालत में 6-7 मिलियन तूफान हवा हो गए। जाफरी साहबा
जी,
जरा 1 मिनट के लिए आइए।
जी फरमाए।
उनके ताल्लुकात अम्मा के डायरेक्टर को मिलाए, मैं बात करना चाहता हूँ। हेलो,
सलाम अलैकुम फरूजान फर साहब।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ। आपके पास आज आधा घंटा वक्त होगा हमारे दफ्तर आने के लिए?
क्या कुछ हुआ है?
असल में नेखास साहब एक केस के बारे में आपके साथ बात करना चाहते थे।
ठीक है, अलबत्ता एक छोटा सा मसाला पेश आ गया, यहाँ पर 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाऊँ तो ठीक है?
हाँ ठीक है।
आप भी होंगी?
जी हाँ, मैं भी हूँ।
ठीक है, आ जाऊँगा।
आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ?
मेरा लेटर टाइप हो रहा है।
अच्छा ठीक है, तुम कैसे हो? ठीक है,
आइए आइए, तशरीफ लाइए।
कहा 2 घंटे बाद यहाँ होंगे।
ठीक है। हाँ आजर नया साहबा, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जरूरी भी समझता हूँ मैं आपको बताऊँ।
कैसी बात?
मैंने फैसला किया है कि गजल को चंद दिन के लिए उसकी माँ के पास टोरंटो ले जाऊँ, क्योंकि मैं डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ को न देख पाए और मुझसे नाराज़ हो जाए। उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है बेचारी, उसके आखिरी दिन हैं।
मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है नेखास साहब।
मेरी अम्मी भी यही कहती हैं।
तो फिर कब जाने का प्रोग्राम है और कब तक वापस आएंगे? बहरहाल जब आप नहीं होते तो दफ्तर के हालात।
इस हफ्ते टिकट रिजर्व करने को कहलवाया है, अगले हफ्ते वापस आ जाऊंगा
इंशाल्लाह।
मेरे पीछे दफ्तर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे होंगे, सबको बता चुका हूँ।
सच में?
हाँ सच में, तुम वाकई इस लायक हो।
मुझ पर भरोसा करने का बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, अच्छा उस डॉक्टर दाऊदी के केस का क्या बना, आखिरकार मान गए कि नहीं?
उन्होंने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए लेकिन रसीदें नहीं माने, अजीब आदमी है। टैक्स का पैसा नहीं देते लेकिन आने जाने के लिए अपनी जाती गाड़ी हमारे हवाले कर रखी है उन्होंने।
अपनी जाती गाड़ी?
जी, अजीब है ना।
आपको नहीं लेनी चाहिए थी।
जी जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने भी तकलीफ में ले ली।
इनकार कर देती हैं और बात खत्म। काम में भी कोई तकलीफ करता है? मोहतरमा आजर नया, एक अच्छे वकील की सिफत यह है कि हालात साजगार हो तो साफ बात करे और अगर साजगार ना भी हो तब भी साफ बात करे, और अगर खुदा न खास्ता उसकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में उनकी वकालत का पैसा लेने के बजाय उल्टा उनकी गाड़ी का नुकसान भरना होगा हमको।
ठीक है, कल जाके उनकी गाड़ी वापस कर दूंगी।
ये बेहतर है।
इजाजत है?
बिल्कुल, आप तशरीफ ले जाएं।
आपका पेन?
अरे रखिए।
हाँ तो क्या खबर है?
कुछ नहीं,
अस्सलामुअलैकुम।
असली बात बताओ
जनाब, देर अब मैंने कब झूठ
खूब बोले हो, बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही नहीं बताई बात, पूरी बात बताओ।
सब गलती कर बैठा है, बेचारा जवान है और नादान है, जवानी के गुरूर की वजह से अपनी गलती का एतराब भी नहीं कर रहा। उसका दिल बहुत चाहता है कि आके आपके हाथ पैर चूमे लेकिन शर्मा रहा है, वापस आने की जगह भी तो नहीं छोड़ी है ना। साहब आप बुजुर्गी दिखाइए, मैं उसे कहूँ।
अपनी तरफ ही से बात कर रहे हो, फातिमा से क्या काम था?
सब दरअसल फातिमा,
उसके पास क्यों गया था
जनाब? वो दरअसल
उसको भी अदालत ले जाना चाह रहा है।
कैसी अदालत, वो तो है ही नहीं, बल्कि थी ही नहीं, कभी नहीं थी, चली गई। माशाल्लाह से साहब आपकी बहन भी आप जैसे बड़े दिल की मालिक है, बहुत सखी है वाकई।
ठीक है जाओ अपना काम करो, ज्यादा बकवास।
ठीक है जनाब, ठीक है। कासिम दरवाजा खोलो।
मोहतरमा नहीं हो सकता, परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती।
मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे।
हमें इजाजत
अंदर जाने दो ना।
आप अंदर नहीं जा सकती ऐसे, आप पहले इजाजत दीजिए।
सलाम अलैकुम साहब। ये मोहतरमा आपसे मिलने का इशारा कर रही है।
क्या काम है?
नहीं मालूम, ये कह रही है कि खुर्रम साहब की अहलिया।
इसको अकाउंट्स के शोबे में दे दीजिए प्लीज। जी सर फरमाइए।
चौकीदार को फोन करके कह दो कि किसी को पता न चले कि सोहेल खुर्रम की बीवी यहाँ है।
जी जरूर, मैं अभी करती हूँ।
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, काम की बात करो।
गुनाहकार मैं हूँ, सोहेल की कोई गलती नहीं है।
एक दो बात नहीं है मैडम, अब गलती मानने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
आपको तो ये भी नहीं पता कि सोहेल आपके मुकाबले में क्यों खड़ा हुआ था।
इसलिए कि लालची हो गया था, उसका पेट नहीं भर रहा था।
इंजीनियर साहब इतनी जल्दी फैसला ना करें, बदकिस्मती मजीद बदकिस्मती लाती है। मेरा भाई नशे ही है, आखिरी दफा जब मैं नशियात ले जा रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के डर से उसने सारी मनशियात जाया कर दी। मनशियात के मालिक ने भी कहा कि या जान दो या पैसा दो। बेचारे सोहेल को तो पता भी नहीं था कि मेरा भाई करता क्या है।
अच्छा तो मेरी माँ बीमार है और उसके ऑपरेशन पर बहुत खर्चा आ रहा है, ये सब झूठ बातें थी? मैं अब ज्यादा झूठ नहीं सुनना चाहता।
मैं तो आपको सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। चंद दिन बाद कुछ गुंडे आए मेरे दफ्तर और उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया। सुहेल के फरिश्तों को भी इन बातों का इल्म नहीं था।
क्या हालत बना रखी है यहाँ की देखो तो, क्या हाल बना रखा है घर का।
मैं चाहती थी हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हो। मेरी सारी जिंदगी एक झूठ की तरह है, एक कड़वा और सड़ा हुआ फल। मैं तुमसे क्या कहती, मैं क्या कर सकती थी। मैं कहती मेरा भाई साकी है,
منشیات کا خوردہ فروش ہے.
آپ کو کہنا چاہیے تھا, گونگی تھی, آپ کو کہنا چاہیے تھا. کیا ہوا تھا آپ کو؟
میں خود ہی ٹھیک کرنا چاہتی تھی. میں نے سوچا کسی طرح اس معاملے کو صحیح کر دوں گی تمہیں بتائے بغیر. کیا تم نے سوچا کہ ان چند دنوں سے شہرام کہاں ہے؟
کہاں ہے؟
پیسے کا انتظام کرنے گیا ہے. ان گنڈوں نے جنہوں نے یہاں کی یہ حالت بنائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یا پیسہ لاؤ یا ان کا مال واپس کرو.
وہ اسی سلوک کا مستحق تھا, مار ہی دیتے تو بہتر تھا تاکہ ہمیں اس کے شر سے نجات مل جاتی.
ایسا نہ کہو سہیل, میرا ایک ہی بھائی ہے, میں اسے چاہتی ہوں. ایک ہی تو بھائی ہے میرا, میری مدد کرو. میں نے پہلے دن سے ہی تم سے کہا تھا کہ میں اور شہرام ساتھ جڑے ہیں. اگر میں تو شہرام نہیں کہا میں نے. کیا میرا حق نہیں ہے کہ میری زندگی خوشیوں بھری ہو ان تصویروں کی طرح جنہیں انہوں نے پھاڑ پھاڑ کے پھینک دیا؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میری خوشحال زندگی ہو؟ نہیں ہے. میں کیا کروں, میں کیا کر سکتی تھی؟ تم میری مدد کرو.
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک کیڑے کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا وجود ہماری زندگی کو اور تباہ کر دے گا, سمجھی؟
سہیل خدا کے لیے ایسا مت کہو, میرا ایک ہی تو بھائی ہے. میں شہرام کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر میں نے پہلے نہیں بتایا تو مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی کی. اب میں کیا کروں, وہ نہیں سمجھ رہے کہ تو میرا بھائی ہے. وہ بے وقوف ہے, نا سمجھ ہے, احمق ہے.
بس بھی کرو,
وہ تو میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. وہ احمق ہے, وہ نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا. کیا کروں میں؟ آپ کے علاوہ سہیل کس سے مدد مانگ سکتا تھا؟ آپ سے کیا کہتا کہ اس کا سالہ سمگلر ہے؟ کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی, وہ مجبور ہو گیا, میری وجہ سے مجبور ہو گیا.
تم نے کہا اور میں نے سنا, میرا جواب وہی ہے, سہیل کو سزا ملنی چاہیے.
مجھے لگتا تھا اگر آپ پوری حقیقت کو جان لیں گے تو آپ کی رائے بدل جائے گی, لیکن میں غلط سوچتی تھی. بیچارے لوگ ہمیشہ تنہائی رہتے ہیں. خدا حافظ.
کتنے کا قرض ہے؟
کچھ سہیل نے کارخانے کے اکاؤنٹ میں سے کچھ پیسے نکال کر آدھا پیسہ دے دیا ہے. کچھ 35 ملین بچے ہیں.
سہیل کی آزادی کا خیال دل سے نکال دو. البتہ بھائی کے قرضے کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا. میرے بہت سارے دوست ہیں جو باثر ہیں, نام بتاؤ اسمگلروں کا, میں 24 گھنٹے میں پکڑوا دوں گا انہیں.
اس طرح سے ساری عمر ان سے بھاگنا پڑے گا, نہیں چاہیے. خدا حافظ.
ایک منٹ, میں تمہیں قرض دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے.
کیسی شرط؟
بیٹھو.
ٹھیک ہے.
بچوں دھیرے دھیرے, آرام سے دوڑو.
ارے رکو, سنبھال کے بھی آتا ہوں ساتھ میں.
سنبھال کے بچوں.
کہاں جا رہے ہو؟
آپ یہیں پر رکیے, میں ابھی اس کو پکارتا ہوں.
شکریہ.
فوزان پر صاحبہ, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں.
بہت شکریہ. السلام علیکم.
تمہارا نام کیا ہے؟
بہار.
बहुत हो। बाहर के मौसम में बाहर के नाम से एक लड़की अपनी एक नाशनास फूफी के पास आती है। 20 साल के बाद अचानक सबको हमारी याद कैसे आ गई। बहसात, हिसाम, और अब तुम किस लिए?
मुझे जब पता चला कि शहर के किसी कोने में मेरी एक फूफी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और साथ ही आपसे एक बात पूछना चाहती थी, क्या यह सही है कि मेरे वालिद ने आपका हिस्सा हड़प लिया है?
फर्ज करो कि ऐसा ही हुआ है, तो फिर?
अगर सच हुआ तो जब तक मैं आपको आपका हक नहीं दिलवाऊंगी अपने बाबा को छोड़ूंगी नहीं।
लड़की तुम क्या कह रही हो? चंद दिन पहले तुम्हारा बाप मेरे पास आया था, हमेशा की तरह मकरूर और खुदगरज। ऐसी हालत में तुम मेरा हक उससे ले सकोगी? उठो उठो, जाओ अपना काम करो।
माफ कीजिए, खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं था कि अब्बू आपके पास आए थे। जो भी उन्होंने आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सच तो यह है कि मैं और मेरी बहन निगार आपसे आना जाना रखना चाहते हैं, अलबत्ता अगर हम आपके मुजाहिम ना हों। किसी दिन हमारे घर पर जरूर आइएगा, मेरी माँ बहुत खुश होंगी आपसे मिलकर।
मेरी बेटी, किस लिए तुम लोगों के घर आऊं? इसलिए कि तुम्हारा बाप फिर से मुझे जो जी में आए सुनाए? देखो बीबी, मुझे एक अरसा गुजरा है खुद को ये बावर कराने में कि मेरी किस्मत में तन्हाई लिखी हुई है। तुम क्यों मेरी तन्हाई और सुकून को बर्बाद करना चाहती हो? जी
फरोजान फरसाहिबा, माफ कीजिएगा, देखिए अहमद करीमी की हालत अच्छी नहीं है, स्कूल के डॉक्टर भी छुट्टी पर हैं। टैक्सी लूं, इन्हें घर पे पहुंचा दूं या क्लिनिक पहुंचाऊं?
क्या हुआ अहमद बेटा, क्या हुआ बच्चे?
मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरा चेहरा भी तप रहा है,
लगता है इसको बुखार है।
माफ कीजिएगा फूफी जान, अगर आपकी इजाजत हो मैं उसे मुआयना करूं।
क्या तुम डॉक्टर हो?
जी, इंटर्नशिप खत्म होने वाली है मेरी।
ये मोहतरमा आपकी भतीजी है?
हाँ।
माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैंने आपको नहीं पहचाना था।
कोई बात नहीं। अच्छा, बदन में भी दर्द हो रहा है क्या?
नहीं।
नाश्ता किया है?
नहीं।
गहरी सांस लो और गहरी।
जब सांस लेता हूँ तो ये चक्का जलती है।
मुंह और गहरा, मुंह खोलो, आ करो, आ करो, आ।
मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि ये अर्ज करने के लिए कि ये केस दलायल की कमी के बाइस किसी नतीजे पर नहीं पहुँचने वाला और इस पर काम बंद करने का हुक्म आने वाला है।
लेकिन मेरे पास दो गवाह हैं।
जनाब
फरूजान फर।
जी फरूजान फर साहब। पहला गवाह जनाब
कासिमी, दिलावर कासिमी।
दिलावर कासिमी से तो हम अच्छी तरह से मिले भी नहीं हैं ताकि पता चले कि उनकी गवाही कानून के मुताबिक है कि नहीं। दूसरा गवाह जनाब
खुर्रम,
सोहेल खुर्रम। पहली बात तो ये है कि ये जेल में है और दूसरे ये कि कानून के मुताबिक आपके चचा के कारखाने से चोरी के बाइस उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
अरे निखा साहब, पहले दिन बता देते तो अच्छा होता।
देखिए फरूजान फर साहब, मैंने पहले ही दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब तक इस केस के बारे में मुकम्मल तहकीकात अंजाम ना दूं आपके केस की समाज शुरू नहीं हो सकती। अब तक आपने जो पैसा मुझे दिया है वो आने जाने वगैरह के कामों में लग गया है। अलबत्ता मेरे जहन में इस मसले का एक हल आया है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं तुम्हारे चचा से मुलाकात के दौरान उनको तजवीज़ दे सकता हूँ कि सआदताबाद की ज़मीनों के माली इख्तलाफात के पैसे, जो खुद भी एक बड़ी रकम बनती है, आपको अदा कर दें और इस केस को ख़त्म कर दें।
देखिए नेखा साहब, मेरा मकसद पैसा नहीं है। अगर होता तो चचा की बेटी से शादी कर लेता और चचा के कारखाने का मालिक बन जाता। इस तरह मेरे माल मसाइल भी हल हो जाते। मैं हकीकत को जानना चाहता हूँ, अपने बाप के मरने की हकीकत को।
माजद के साथ मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, शायद दूसरे वकील कर सके, मैं नहीं कर सकता।
ٹھیک ہے، لیکن یقین رکھیے نیکا صاحب، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. نیکا صاحب، معاف کیجیے جو پوچھ رہی ہوں، ہاں، لیکن کیا آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ان کے دعوے کے اثبات کا کوئی راستہ نہیں ہے؟
دیکھیے آزر نیا صاحبہ، آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ بھی کالج اور کتابوں میں اور بینچ پر بیٹھ کر نہیں، بلکہ سڑکوں پر، گلیوں اور بازاروں میں، لوگوں کی لڑائیوں میں اور عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تم سیکھ پاؤ گی.
معاف کیجیے گا، میں آپ کا مطلب سمجھی نہیں.
دیکھیے آزر نیا صاحبہ، کسی کیس میں کامیابی ایک وکیل کی سب سے بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کامیابی آسانی سے ممکن نہیں ہے. سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کا اختلاف حل کر کے اپنی فیس لے لیا جائے، اور یہی سب سے اچھا راستہ ہے.
جی،
جب ہم اس راستے سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو کس لیے ایک سخت راہ کا انتخاب کیا جائے جبکہ اس میں ممکن ایک لمبا راستہ درکار ہو؟
آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کہ چچا معاملہ کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟
اگر چچا کے خیالات اور مزاج کو نہ جانتا تو مدعی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا.
ہاں، تو آپ اس کی چچا سے مل چکے ہیں؟
ہاں، مل چکا ہوں.
اگر بہزاد فروزان فر کسی اور وکیل کے پاس گیا تو؟
نہیں جائے گا، فروزان فر یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو خوب مایوس کر دیا ہے. اب وہ بالکل اس گھوڑے کی طرح ہے جس کے منہ پر لگام باندھا گیا ہو لیکن سواری نہ دیتا ہو، دلتیاں مارتا ہو اور ادھر ادھر بھاگتا ہو، اور آخر کار تھکنے کے بعد صرف آگے کی طرف دیکھتا ہو لیکن آگے صرف ڈیڈ لاک ہوتا ہے. اس صورت میں فون اٹھاتا ہے، گھوڑے کا نہیں، فروزان فر کا، کہہ رہا ہوں، اور مجھے فون کرتا ہے، لیکن میں دفتر نہیں ہوتا اور سفر پر گیا ہوتا ہوں. آپ اسے کہتی ہیں کہ نیک خان صاحب کے واپس آنے تک انتظار کرنا ہوگا.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا.
سیکھو گی، ضرور سیکھو گی، مجھے تم پر یقین ہے.
جی، اجازت ہے؟
جی.
معاف کیجیے گا.
السلام علیکم.
کیا حال ہے؟
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
کیا حال ہے سینا بھائی؟
شکریہ. کیسے ہو؟ ارغوان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اس کو کہاں سے لائی؟
یہ میری فیس ہے.
مذاق نہ کرو، صحیح بتاؤ.
میرے ایک مالدار موکل کی ہے امانت میرے ہاتھ میں.
کیا مطلب مالدار موکل؟
اچھا، اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں. اس بندے خدا کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا، اس کے ایک دو قانونی کام تھے، گاڑی مجھے قرض دیے، سمجھے؟
ارغوان، تمہیں تو پتا ہے کہ میری ڈرائیونگ بہت اچھی ہے.
مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے محلے کا ایک چکر لگا کے آؤں، تھوڑا شو مار کے آؤں. ذرا
نہیں سینا صاحب، یہ بہت مہنگی ہے، اگر ایک خراش بھی پڑ گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا.
ارے کوئی خراش وراش نہیں پڑے گی،
تم سے کہہ رہی. نہیں،
تم کیسی وکیل ہو، شرم آنی چاہیے. میں ٹرائی کرتا ہوں،
جاؤ،
کہیں لاک نہ ہو تو.
تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں جانے کی؟ کس سے پوچھ کر گئی تھی وہاں؟
ارے اتنا غصہ نہیں کرو، اٹیک آ جائے گا.
ابو آپ صرف چیختے ہیں، بہتر ہے کبھی دوسروں کی بات بھی سنا کریں.
باہر یہ پھپھو کون ہے؟ قصہ کیا ہے؟
تم سے کیا تعلق؟ کل امتحان نہیں ہے تمہارا، جاؤ اپنی پڑھائی کرو.
مجھ سے کیوں تعلق نہیں؟ باہر کی پھپھو میری پھپھو نہیں ہے کیا؟ کیا میں یہاں گاجر مولی ہوں کیا؟
ارے جب تمہارے ابو ان سے ناراض ہیں تو تمہیں بھی ان کا نام نہیں لینا چاہیے.
میں صرف حقیقت جاننا چاہتی ہوں، یہ کوئی زیادہ توقع ہے کیا؟
بالکل نہیں، मैं भी जानना चाहती हूँ।
ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब जो मैं कहूंगा तुम सब उस पर यकीन करोगी ना?
हाँ अबू जान, बिल्कुल यकीन करूंगी।
मेरी वालिदा मरहुमा ये नहीं जानती थी कि अब्बा ने खुफिया तौर पर 18 साल पहले एक औरत से शादी की और एक फातिमा नाम की उससे लड़की भी है।
खुफिया तौर पर क्यों?
क्या बताऊं, शायद मेरी वालिदा और अपने रिश्तेदारों के डर की वजह से। लेकिन मुझे और हबीब को पता चल गया कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। उनसे कहा कि दूसरी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन वो नहीं माने। मुझे अपनी अम्मी की फिक्र थी, उनको अगर पता चलता तो वो मर जाती। फिर अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और चलने के काबिल न रहे। फातिमा की माँ हर रोज हमारे दरवाजे पर आके अब्बा का हाल चाल पूछती। फिर हमने और हबीब ने फैसला किया कि उनके घर जाएं। अब्बा के मुख्तार नामे के जरिए हम वो घर जिसमें वो लोग रह रहे थे उनके नाम कर दें और महीने के लिए कुछ रकम मुअय्यन कर दें ताकि हमारी जान छोड़ दें वो। बेगम, मैं कुछ भूला तो नहीं ना?
नहीं, यही हकीकत थी, सब सच था। यानी उनका पूरा हक सिर्फ एक घर था और एक माहवार वजीफा, तो उनका बाकी हिस्सा कहाँ गया?
कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? तुम क्यों अपनी बात पर अड़ी हुई हो? देखो लड़की, अगर मुझे फातिमा को कुछ देना भी हो तो उसका टाइम ये नहीं है।
क्यों नहीं है?
क्योंकि फातिमा किसी और ने उकसाया है। मैं अगर इस वक्त उसको कुछ दूंगा, इसका मतलब ये होगा कि बहजाद की बात सही है और मैं डर गया हूँ, पीछे हट गया हूँ।
पर आप इतने साल बाद फातिमा पुपी के पास गए और उनसे बात की है, सच बताइए अब्बू, आपको किस चीज का खौफ है?
किस चीज का खौफ है? फैमिली की दाखिली जंग और लड़ाइयों का, जो अपने नुकसान का ही बाइस बनती है। अपने मुस्तकबिल का, रुसवाई का, जज के फैसले का, मजबूरी में हद के हुर्मत का मुकदमा दायर करने का। मैंने अच्छाई की और जवाब बुराई में मिला। मुझ पर इल्जाम लगाया गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया।
कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। आप अब भी फरूजान फर फैमिली के बड़े हैं और ये सब जानते हैं। अब ये ले पी लें।
बड़ा नहीं हूं और बनना भी नहीं चाहता।
देख लो, यही चाहती थी। ये ले हिसाम, पीत मिश का शरबत पिए, आपके लिए तैयार किया है मैंने।
बाहर फूफो कैसी दिखती थी, कैसी थी? शोहर भी था उनका, कितने बच्चे हैं?
निगार, बाद में मैं तुम्हें सब बताऊंगी तफसील से।
ये ले अम्मी, ये गर्मा गर्म तीन रोटियां।
बहुत शुक्रिया मेरे बेटे।
अरे फिर तुमने आधी रोटी खा ली, ये मैंने खाना किस लिए बनाया है ये बताओ मुझे। हैं
सीना, गाड़ी सलामत है ना?
हाँ, बस उसका एक आईना पहले से टूटा हुआ था, शायद अब आप रोटियां लेने गई होंगी तो टूट गया होगा।
क्या?
मजाक कर रहा था।
अरे तुम इतने बेजा मजाक क्यों करते रहते हो? हैं, हमारे अपने मसाइल कम है, जो अब ये दाऊदी साहब की गाड़ी भी नहले पे दहला हो गई है हमारे लिए।
अरगवान, अगर तुम चाहो तो मैं गाड़ी के पास बिस्तर लगा के सुबह तक सो सकता हूँ।
अब ज्यादा ना बनो।
अरे हाँ अरगवान, इस दाऊद की कोई औलाद नहीं है, बेटा या बेटी?
बेगम का तो इंतकाल हो गया, बच्चे शादी करके बैरून मुल्क चले गए हैं।
आखिर इतने बड़े और शानदार घर में एक मालदार मर्द अकेले रहना कितना मुश्किल है। सही कह रहा हूँ ना हुमा?
बेवकूफ सीना।
हेलो, सलाम अलैकुम, शब बखैर।
माफ कीजिएगा इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। असल में मुझे भी नेखवास साहब की बातों से नहायत हैरानी हुई है और मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता शायद उनके पास अपनी बात के लिए दलाइल मौजूद हों, पर मैंने सोचा कि इस मसले पर आपसे बात करूं।
इत्तेफाक से आजानिया साहिबा, मुझे भी आपसे बात करनी थी, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैं नहीं समझता था कि ऐसे मुश्किल वक्त में आप मुझे अकेला छोड़ देंगी।
حقیقت یہ ہے کہ
میں آپ کے بھروسے پر آگے بڑھا تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں.
دیکھیے میرے پاس ایک تجویز ہے.
میں آپ سے کہاں مل سکتی ہوں؟
آپ کا دفتر ٹھیک رہے گا؟
نہیں, دفتر کے علاوہ کسی اور جگہ. البتہ غلط فہمی نہ ہو, یہ صرف کام کے سلسلے میں ہے.
ٹھیک ہے, تو کل میں آپ کو فون کروں گا اور جگہ اور وقت کا تعین کر لیں گے.
اوکے, پھر خدا حافظ.
شب بخیر.
ہما بیٹی, یہ سامان سمیٹ کے سائٹ پہ رکھ دو, کھانا کھانے آ جاؤ.
ٹھیک ہے. ارغوان کون تھا؟
میرا موکل فروزان فر.
اس کی کیا عمر ہے؟
کون
کون میں؟ یہی تمہارے داودی صاحب.
ہما
کیا ہے؟
تم تو خود ٹیلر ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں بنتا.
ارے کیوں, میں جب بھی کوئی بات کرتی ہوں آپ غلط مطلب نکالتی ہیں. اور ہاں, ہمیں کیا کمی ہے, وہ تو خدا سے بھی چاہے گا.
تمہارے اتنے نخرے ہیں تو کیا ایک ٹھیلا جہیز ہے تمہارے پاس؟
خدا قسم سینا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. کدوم خسته هم کدوم جون